दिन भर 3 अगस्त दिन शुक्रवार मैं हूँ वात्सल्य राय। नागरिक रजिस्टर पर राज्यसभा में बोले गृह मंत्री, असम में नहीं होगा भेदभाव, एनआरसी कोऑर्डिनेटर ने बीबीसी से कहा।
पूरी प्रक्रिया जो है धर्म या किसी कम्युनिटी को या किसी रेस को लेके नहीं है, ये एक डेट को लेके है।
मुजफ्फरपुर यौन शोषण मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तोड़ी चुप्पी।
मुजफ्फरपुर में ऐसी घटना घट गई कि हम लोग शर्मसार।
और विवेचना में रेहान फजल से सुनिए 46 साल पुराना वो किस्सा जब एशिया के 60,000 लोगों को युगांडा से निकाल दिया गया।
माहौल बहुत खराब था, काफी पैनिक था, डिस्ट्रेस था, क्योंकि काफी लोग तो युगांडा से भी बाहर नहीं गए थे कभी, और कभी ईस्ट अफ्रीका से बाहर नहीं गए थे, और सडनली उनको सब छोड़ के जाना पड़ा।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। असम में 30 जुलाई को जारी की गई राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी के मुद्दे पर सरकार की ओर से राज्यसभा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये एनआरसी की आखिरी लिस्ट नहीं है और सबको अपनी पहचान साबित करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं, किसी भी भारतीय नागरिक का नाम इस लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। चीन के जिनान शहर में लाइव रेडियो इंटरव्यू के दौरान एक चीनी कार्यकर्ता सुन वेंगवांग को माइक से हटने के लिए बाध्य किया गया है। सेवानिवृत्त यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सुन वेंगवांग अमरीकी मदद से चलने वाले प्रसारक वॉइस ऑफ अमेरिका के एक कार्यक्रम में बात कर रहे थे जब पुलिस अचानक ही उनके घर में घुस आई। वो चीनी भाषा में चीन के विदेशी निवेश के बारे में बात कर रहे थे। सुन वेंगवांग चीनी सरकार के आलोचक रहे हैं। माइक बंद होने से पहले सुन वेंगवांग ने कहा, वो लोग फिर से आ गए हैं, पुलिस फिर से मुझे रोकने आ गई, 6-4-5 कुल 6 पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। अब क्या, मैंने क्या गलत कह दिया? पहले ये तो सुन लीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। हमारे देश में गरीबी है और हमें अफ्रीका में निवेश नहीं करना चाहिए। आप जो 7-8 लोग यहाँ आए हैं, आप सुनिए कि देश का पैसा ऐसे ही किसी और देश में लगा देना देश और समाज के हित में नहीं है, ये ठीक नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आपका मेरे घर इस तरह आना गैरकानूनी है। अभिव्यक्ति की आज़ादी मेरा अधिकार है। चीनी सेवानिवृत्त प्रोफेसर सुन वेंगवांग के शब्द। वॉइस ऑफ अमेरिका ने कहा है कि इस कॉल के कट हो जाने के बाद वो सुन वेंगवांग से संपर्क नहीं कर पाए हैं। वेंगवांग के एक मित्र ने बीबीसी को बताया कि जिनान शहर की पुलिस फिलहाल उन्हें अपने साथ ले गई है। जिम्बाब्वे के सबसे बड़े और स्वतंत्र चुनाव पर्यवेक्षक जिम्बाब्वे इलेक्शन सपोर्ट नेटवर्क ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के जो नतीजे घोषित किए गए हैं वो उनके आंकड़ों से काफी हद तक मेल खाते हैं। नेटवर्क का कहना है कि मौजूदा राष्ट्रपति इमरसन मननगावा ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं। इधर जिम्बाब्वे के विपक्षी पार्टियों के गठबंधन एमडीसी के नेता नेल्सन चामिसा के संवाददाता सम्मेलन में पुलिस पहुंच गई है और पुलिस ने वहां मौजूद पत्रकारों को संवाददाता सम्मेलन की जगह से बाहर निकाल दिया है। इससे कुछ घंटे पहले एमडीसी के प्रवक्ता वेल्शमैन नूबे ने बीबीसी से कहा था कि नेल्सन चामिसा मीडिया के सामने सोमवार को कराए गए चुनावों में हुई धांधली के सबूत पेश करने वाले हैं और वो ये भी बताएंगे कि गठबंधन का अगला कदम क्या होगा। हमारे दफ्तरों पर छापे मारे गए हैं और हमारे कंप्यूटरों में छानबीन करने के लिए वारंट भी जारी किए गए हैं। ये साफ तौर पर इस ओर इशारा है कि हमारे पास चुनाव में धांधली होने से संबंधित जो सबूत हैं वो लोग उसे जब्त करना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं करते अगर वो ये बात नहीं जानते कि हम ये जानते हैं कि मतदान केंद्रों में जो नतीजे घोषित हुए हैं और चुनाव आयोग ने जो नतीजे घोषित किए हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। जिम्बाब्वे के विपक्षी पार्टियों के गठबंधन एमडीसी के प्रवक्ता वेल्शमैन नूबे। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ओसामा बिन लादेन की मां आलिया घानिम ने कहा है कि उनका बेटा ओसामा एक अच्छा बच्चा था लेकिन स्कूल में उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया था और उन्हें कट्टरपंथी बना दिया गया था। गार्डियन अखबार से बात करते हुए आलिया घानिम ने कहा कि सऊदी अरब में एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते वक्त वो एक खास पंथ से जुड़े जिसके बाद वो एक अलग व्यक्ति बन गए। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार उसे कहा कि वो उस समूह से दूर रहे। माना जाता है कि ओसामा बिन लादेन के आदेश पर ही अमेरिका में 9/11 के हमलों को अंजाम दिया गया था। लादेन की मां का कहना है कि ओसामा उनसे बेहद प्यार करते थे और उन्होंने कभी भी उन्हें ये नहीं बताया कि वो कौन सा काम कर रहे हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। आज दिनभर में सबसे पहले बात राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी की। असम में बीती 30 जुलाई को जारी हुए एनआरसी के फाइनल ड्राफ्ट का मामला आज भी संसद में उठा। राज्यसभा में इस मुद्दे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया और कहा कि कुछ लोगों ने इस मामले में गलत फहमियां फैलाने की कोशिश की है, अनावश्यक रूप से डर का माहौल पैदा किया गया है, सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने और क्या कहा वो सुनिए।
कोई भेदभाव न हुआ है और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं न आगे कोई भेदभाव होगा, और इस प्रकार के आरोप यदि कोई लगाता है तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा। मैं इस बारे में आश्वस्त करना चाहता हूं सभापति महोदय कि जो ही आवश्यक प्रमाण पत्र अपेक्षित हैं एनआरसी के लिए दिए जाने के लिए, वह सारे आवश्यक प्रमाण पत्र देने पर किसी भारतीय नागरिक का नाम नहीं छूटेगा, उस भारतीय नागरिक का नाम एनआरसी में शामिल किया जाएगा।
दरअसल असम में रहने वाले करीब 40 लाख लोगों के नाम एनआरसी के फाइनल ड्राफ्ट में नहीं है और इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। हालांकि एनआरसी के कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला कहते हैं कि सूची तैयार करने में धर्म या नस्ल को आधार नहीं बनाया गया है, इसका आधार एक तारीख है। 24 मार्च 1971 से पहले बांग्लादेश से भी आए लोगों को एनआरसी में जगह दी गई है। प्रतीक हजेला से बीबीसी उर्दू के हमारे साथी शकील अख्तर ने बात की और सबसे पहले पूछा कि एनआरसी में जिन 40 लाख लोगों को जगह नहीं मिली है, क्या उन्हें विदेशी कहा जाएगा या फिर उन्हें किस कैटेगरी में रखा जाएगा?
बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते हैं कि हम उनका स्टेटस कैटेगोरिकली क्या है, क्योंकि ये एक ड्राफ्ट है तो कानून इस बात को समझता है कि पहली जो हमारा वेरिफिकेशन का रिजल्ट आएगा इसको हमें जनता के सामने पेश करना है, जिससे कि उसके अंदर जो कोई भी भूल है, वो भूल हो सकती है कि किसी जेन्युइन आदमी बाहर हो गया हो या कोई ऐसा आदमी उसके अंदर शामिल कर लिया गया है जिसको कि शामिल नहीं होना चाहिए। तो कोई ऐसा जेन्युइन एप्लीकेंट जो कि बाहर हो गया उसको फिर से एक बार एप्लीकेशन करने का मौका दिया जाएगा, जिसको कि हम क्लेम बोलते हैं।
3,29,00,000 बाशिंदे और इनके कागजात की जांच, तो इसमें काफी गलतियां भी तो होने की संभावना है।
गलती होने की संभावना है, इसीलिए जो है जो हम एक लिस्ट बनाएंगे उसको जनता के सामने प्रस्तुत करने की जरूरत है। 3.25 करोड़ लोग हैं, साथ में 6.5 करोड़ डॉक्यूमेंट भी हैं। करीब 41 लाख ऐसे लोग हैं जो कि 71 से पहले बाशिंदे थे आसाम के या कहीं और के, 24 मार्च 1971 से पहले, जिनके की डिसेंडेंट्स हैं 3.25 करोड़ लोग। उनके बीच में कंसिस्टेंसी भी हम देखते हैं कि जिसको उन्होंने अपना एंसेस्टर बता के दिखा के अप्लाई करा है वो उसी के वंशज हैं या नहीं है।
ये बहुत से लोगों के जहन में है कि उन्हें उन्हीं ऑफिशियल्स के पास दोबारा जाना होगा जो एनआरसी के केंद्र हैं, वही ऑफिसर करेंगे जिन्होंने उनका पहले राउंड में एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसमें कितनी फेयरनेस रहेगी?
31 जुलाई को जब सुनवाई हुई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ, तो उन्होंने हमको ये बोला कि जो भी आप प्रोसीजर इसके बाद क्लेम्स ऑब्जेक्शन के डिस्पोजल का बनाएंगे तो एक फेयर प्रोसीजर होना चाहिए। हम अपने मोडेलिटीज या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हम अपनी तरफ से ये कोशिश करेंगे कि वो ऑफिसर हम बदल दें, हम हो सकता है रैंक में भी चेंज लेके आए, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने जब गृह मंत्रालय उसको प्रस्तुत करेंगे उसके बाद जो उनका निर्देश होगा उसके हिसाब से ही इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा।
जो इलेक्शन कमीशन के जो रोल्स होते थे उनकी जो लिस्ट होती थी उसमें इतनी बड़ी तादाद में नहीं आए थे और इतना बड़ी तादाद में इसमें जो लोग निकल के आ रहे हैं, तो वो कैसे इतना बड़ा फर्क है? ये
सबसे पहले तो ये तादाद, अभी हम 40 लाख को हम फाइनल फिगर तो नहीं,
जी हाँ बिल्कुल,
किसी और एजेंसी की फाइंडिंग को हम सीधे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं। हम हर एक का लिंकेज 71 से पहले तक खुद से ट्रेस करते हैं एक एग्जॉस्टिव वेरिफिकेशन के जरिए।
चूंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू रहा है असम के अंदर, तो इसमें रिलीजन का भी कोई सवाल आता है कि हिंदू मुस्लिम के भी लोग इश्यूज आते हैं, बंगाली वर्सेस असमीज का भी कुछ लोग जिक्र करते हैं, ग्राउंड पे जिन लोगों ने काम किया है ऐसा तो नहीं कि वो भी कहीं बायस हुए हों?
इतने सारे ऑफिसर जब इन्वॉल्व होते हैं तो हर एक का कॉम्पिटेंस लेवल अलग होता है, हर एक की अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, तो हमने कंटिन्यूस ट्रेनिंग का जरिया अपनाया था जिससे कि सबकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। जो भी वो परीक्षण कर रहे हैं उस सारे डेटा जो है हमारे पास में एक सेंट्रल डेटाबेस में आता है जिसके अंदर की हम क्वालिटी चेक करते हैं। तो नीचे वाले ऑफिसर के मन में हमेशा ये रहता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ऊपर वाले ऑफिसर कभी भी जो है उस चीजों को देख सकते हैं। तो ये पूरा काम जो है वो ऐसा है जिसमें कि कोई भी चीज कभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच जा सकती है। वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये पूरी प्रक्रिया जो है ये धर्म या किसी कम्युनिटी को या किसी रेस को लेके नहीं है, ये एक डेट को लेके है और वो डेट है 24 मार्च 1971। उससे पहले जो लोग बांग्लादेश से भी आए हों अगर तो भी वो हमारे सिटीजनशिप सूची में शामिल होने के लिए उनकी पूरी एलिजिबिलिटी है।
ये थे एनआरसी के कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला और उनसे बात कर रहे थे शकील अख्तर।
40 लाख लोगों को नागरिकता रजिस्टर से खारिज किए जाने का क्या अर्थ है, क्या फायदे और क्या खतरे हैं ऐसी कवायद के, इस बार इंडिया बोल में इसी विषय पर होगी चर्चा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 4 अगस्त शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब बात बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले पर पहली बार बयान दिया है। विपक्षी दल इस मामले को लेकर सरकार को लगातार घेरने में लगे हैं। मुख्यमंत्री ने क्या कहा और उस पर विपक्ष का क्या कहना है, सुनिए मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
मुजफ्फरपुर यौन शोषण मामले में नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया यह मामला सामने आने के करीब 2.25 महीने बाद आ जाई। नीतीश कुमार ने आज समाज कल्याण विभाग की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत की। इसी विभाग द्वारा ही मुजफ्फरपुर बालिका गृह का संचालन एक NGO द्वारा कराया जा रहा था। आज के कार्यक्रम में पटना के अधिवेशन भवन में अपने भाषण के अंतिम हिस्से में नीतीश ने कहा कि मुजफ्फरपुर में ऐसी घटना घट गई कि हम लोग शर्मसार हैं।
मुजफ्फरपुर में ऐसी घटना घट गई कि हम लोग शर्मसार, इतनी तकलीफ में और आत्मग्लानी के हम लोग अब शिकार हो गए। जानकारी मिल गई तो कार्रवाई हो रही है कि भाई हम लोग तो चाहेंगे कि CBI की इंक्वायरी, हाई कोर्ट उसको मॉनिटर करे, उसकी मॉनिटरिंग में उसकी जांच होनी चाहिए ताकि कोई इसमें दोषी है वो बचे नहीं, सब पर पूरी कार्रवाई।
नीतीश कुमार की आज की प्रतिक्रिया राजद नेता और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 2 दिन पुराने चुनौती के बाद भी आई है। 1 अगस्त की रात तेजस्वी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि मुख्यमंत्री की आपराधिक चुप्पी तुड़वा कर रहूंगा चाहे जो समय लगे। लेकिन ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की आज की प्रतिक्रिया भी तेजस्वी को संतुष्ट नहीं कर पाई और उन्होंने फिर से नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग लिया। राजद उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी तेजस्वी की मांग को दोहराते हुए कहते हैं,
तो ये शर्मनाक घटना तो उन्हीं के शासनकाल में है, लंबे अरसे से चल रहा है और जिस तरह की ये घटना है पूरे देश और दुनिया में थू-थू हो रहा है बिहार का। तो नीतीश कुमार ये कह के अपने गर्दन नहीं छुड़ा सकते हैं, जवाबदेही से नहीं भाग सकते हैं कि CBI जांच करेगी। सृजन में भी CBI जांच कर रही है, कहाँ कोई नतीजा निकल रहा है। तो ये नीतीश कुमार सबको नैतिकता के आधार पर जरा सा भी उनमें शर्म बाकी है तो उनको इस्तीफा दे करके मैंने कुर्सी खाली करनी चाहिए।
तेजस्वी कल इस मुद्दे पर नई दिल्ली के जंतर मंतर में धरना देंगे। उनके मुताबिक बाकी दलों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस धरने में शामिल होंगे। मनीष शांडिल्य, BBC पटना।
आज लोकसभा में मीडिया की आजादी का मुद्दा उठा। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ABP न्यूज चैनल के एक वरिष्ठ अधिकारी और एक एंकर के इस्तीफे का मामला उठाया और आरोप लगाया कि इसके पीछे सरकार की ओर से बनाया जा रहा दबाव है। लेकिन केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। सुनिए BBC संवाददाता फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
ABP चैनल की जो खबर पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल थी वो आज लोकसभा में भी चर्चा में आ गई। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चैनल के मैनेजिंग एडिटर के इस्तीफे और एक एंकर को हटाए जाने को सरकार की ओर से मीडिया को धमकाने और मुंह बंद करने का मामला बताया और कहा,
सेंट्रल हॉल में भी सीनियर MP राज्यसभा के मेंबर है, वो खुद ही मीडिया को चैलेंज करते हैं, अगर हमारे विचारों पे आप नहीं चलेंगे
ऐसी बातें ये
हमारे विचार चलेंगे तो हम आपका चैनल बंद कर देंगे।
हालांकि केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि ये चैनल का आंतरिक मामला है,
सरकार का इससे लेने देना कुछ नहीं है। इस जिस चैनल की ये बात कर रहे हैं उसकी लगातार टीआरपी गिर रही है क्योंकि लोग उसको देखना नहीं चाहते। अब उसका जिम्मा वो सरकार के ऊपर डाल रहे हैं।
राजवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि खड़गे जिस चैनल की बात कर रहे हैं उसने खबर गलत चलाई थी, फिर भी सरकार ने उसे कोई कारण बताओ नोटिस नहीं भेजा। खबर गर्म थी कि मास्टर स्ट्रोक नाम के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के एक दावे को जिस तरह से गलत बताया गया था उसे लेकर चैनल के प्रबंधन पर भारी दबाव था। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से हुई बातचीत में दावा किया था कि सरकार की स्कीम के कारण चंद्रमणि कौशिक की आमदनी दोगुनी हो गई है, लेकिन एबीपी के रिपोर्टर ने जब छत्तीसगढ़ की इस महिला से बात की तो उसने दावा किया कि उसे अधिकारियों ने प्रधानमंत्री से ऐसा कहने के निर्देश दिए थे। कुछ लोग मास्टर स्ट्रोक प्रोग्राम के शुरू होते ही चैनल में रुकावट आने की शिकायत काफी दिनों से कर रहे थे। दो दिनों पहले चैनल के एडिटर मिलिंद खांडेकर ने इस्तीफा दे दिया। एंकर पुण्य प्रसून वाजपेयी से जाने को कहा गया और एक एंकर को ऑफ एयर कर दिया गया है।
रिपोर्ट सुना रहे थे फैसल मोहम्मद अली। और अब वक्त विवेचना का। अब से 46 साल पहले यानी 4 अगस्त 1972 को युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन ने वहां रहने वाले 60,000 एशियाइयों को अचानक निकाल दिया। उन्हें युगांडा छोड़ने के लिए सिर्फ 90 दिन का समय दिया गया। उन्हें अपने साथ सिर्फ 55 पाउंड ले जाने की अनुमति मिली। क्या था पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी रेहान फजल।
I have already decided that all Asian who is a British citizen will must leave Uganda. I think Uganda will benefit if Asian are out of Uganda.
ये आवाज है 70 के दशक में युगांडा के तानाशाह रहे ईदी अमीन की, जो ये घोषणा कर रहे थे कि युगांडा में वर्षों से रह रहे ब्रिटिश पासपोर्ट धारी एशियाइयों को 90 दिन के अंदर युगांडा छोड़ देना चाहिए। 6 फीट 4 इंच लंबे और 135 किलो वजन वाले अमीन को हाल के विश्व इतिहास के सबसे निर्दयी और क्रूर तानाशाहों में गिना जाता है। एक जमाने में युगांडा के हैवीवेट चैंपियन रहे ईदी अमीन मिल्टन ओबोटे को हटाकर सत्ता में आए थे। अपने 8 वर्ष के शासनकाल में उन्होंने क्रूरता के जितने प्रतिमान गढ़े, आधुनिक इतिहास में उसके उदाहरण बहुत कम ही मिलते हैं। 4 अगस्त 1972 को ईदी अमीन को अचानक एक सपना आया और टोरोरो में सैनिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अल्लाह ने उनसे कहा है कि वो सारे एशियाइयों को तुरंत अपने देश से निकाल बाहर करें।
Asian have kept themselves apart as a closed community and have refused to integrate with Ugandan Africans.
एशियाइयों ने अपने आप को अलग थलग कर रखा है और उन्होंने युगांडाई अफ्रीकियों के साथ मिलने जुलने की कोई कोशिश नहीं की है। उनकी सबसे ज्यादा रुचि युगांडा की अर्थव्यवस्था का शोषण करने में रही है। उन्होंने गाय को दुहा तो है लेकिन उसे भोजन खिलाने की तकलीफ गंवारा नहीं की है।
शुरू में अमीन की इस घोषणा को एशियाई लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि अमीन ने अपने सनकपन में ये ऐलान कर दिया है, लेकिन थोड़े ही दिनों में उन्हें पता चल गया कि अमीन वाकई उन्हें बाहर निकालने पर उतारू थे। भारत सरकार ने स्थिति का जायजा लेने के लिए भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी निरंजन देसाई को वहां भेजा। देसाई याद करते हैं,
माहौल बहुत खराब था, काफी पैनिक था, डिस्ट्रेस था, क्योंकि काफी लोग तो युगांडा से भी बाहर नहीं गए थे कभी, और कभी ईस्ट अफ्रीका से बाहर नहीं गए थे, और सडनली उनको सब छोड़ कर जाना पड़ा। और गवर्नमेंट ने कोई भी इंस्ट्रक्शन इश्यू नहीं की थी कि वो क्या ले जा सकते क्या नहीं ले जा सकते, मगर जो जो स्मार्ट लोग थे उन्होंने काफी तरीके अपनाए और काफी अपना प्रॉपर्टी और पैसे फंड बाहर निकाल दिया।
अमीन का यह फैसला इतना अचानक था कि युगांडा की सरकार भी इसको लागू करने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ अमीर एशियाइयों ने अपने धन को खर्च करने का नायाब तरीका निकाला।
जो लोग बहुत पैसे वाले थे उन्होंने सारे फैमिली के लिए राउंड द वर्ल्ड टिकट्स ले ली फर्स्ट क्लास की, साथ में वो होटल बुकिंग और MCO की तरह ले लिया क्योंकि वो बाद में रिफंड कर सकते हैं। तो ऐसे पैसे निकाल दिए, किसी ने डायरेक्टली फंड ट्रांसफर कर दिए, کسی لوگوں نے کار کے اندر جویلری اور پیسے سب نکال کر کینیا چلے گئے، اور کسی لوگوں نے فوج سے پارسل کر دیا. پوسٹل سروس اچھی تھی کہ کافی لوگ کو جویلری آپ کو مل گئی لندن میں، اور کوئی لوگ ایسے تھے انہوں نے سوچا کہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ لوگ واپس آ جائیں گے، تو انہوں نے اپنی جویلری اپنے گارڈن میں چھپا دی، وہ تو چلی گئی. مگر کافی لوگ نے بینک آف بڑودا میں سیف ڈپازٹ والٹ میں رکھ دی تھی، اور یہ بینک نے بہت سنبھال کر رکھا. اور جب موسیونی گورنمنٹ آئی پاور میں، تب کافی لوگ آئے اور جویلری لے گئے واپس.
نارڈن داوود یوگانڈا کے ایک اسکول میں ادھیاپک تھے. ان کی پتنی کے رشتے دار پاکستان سے آتے تھے.
All Asians started lining up outside the offices of various embassies, and I am very grateful to all those embassies. India.
سبھی ایشیائیوں نے کئی دوتاواسوں کے باہر لائن لگانی شروع کر دی. کینیڈین دوتاواس کے باہر بھی بہت لمبی لائن لگی ہوئی تھی. میں نے وہاں آویدن دیا اور انتظار کرنے لگا کہ کب میرا نام استھانی اخبار میں چھپے تاکہ میں وہاں انٹرویو دینے کے لیے جا سکوں. ان کا کہنا تھا کہ جن کو وہ لوگ انٹرویو میں بلائیں گے ان کے نام اخبار میں دے دیے جائیں گے. میں انتظار ہی کرتا رہا، لیکن کینیڈینز نے مجھے نہیں بلایا. پھر میں نے وہاں گیٹ پر کھڑے ایک کالے شخص کو اندر جانے کے لیے رشوت دی. میں اندر گھسنے میں سفل ہو گیا. وہاں موجود ایک مہیلا نے مجھے بتایا کہ میرا آویدن اس لیے سفل نہیں رہا کیونکہ میں ایک ادھیاپک تھا اور کینیڈا کو ادھیاپکوں کی ضرورت نہیں تھی. دوسرے، میں یوگانڈا کا ناگرک تھا اور ان کی نظر میں مجھے باہر نکالے جانے کا خطرہ نہیں تھا، جبکہ یہ واستوکتا سے بہت دور تھا.
کئی دنوں تک کئی دوتاواسوں کی خاک چھاننے کے بعد آخرکار داوود کو آسٹریلیا نے ویزا دیا تھا. اسی طرح گیتا واٹس کو وہ دن ابھی تک یاد ہے جب وہ لندن جانے کے لیے انتیبے ہوائی اڈے پہنچی تھی.
We were given £55. That's all he was allowed to take with him. It was just unbelievable, you know, after everything that he earned, he was just left with £55. When we first got to the airport, people's luggage was opened out.
ہم لوگوں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے صرف £55 دیے گئے تھے. جب ہم ہوائی اڈے پہنچے تو لوگوں کے سوٹ کیس کھول کھول کر دیکھے جا رہے تھے. ان کی ہر چیز باہر نکال کر پھینکی جا رہی تھی تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ اس میں سونا یا پیسے تو چھپے نہیں رہ گئے ہیں. پتہ نہیں کس وجہ سے میرے ماتا پتا نے میری انگلی میں ایک انگوٹھی پہنا دی تھی. ہم سے کہا گیا کہ میں انگوٹھی اتار کر انہیں دے دوں. انگوٹھی اتنی کسی تھی کہ میری انگلی سے اتر ہی نہیں رہی تھی. آخر میں انہوں نے اسے کاٹ کر میری انگلی سے الگ کیا. سب سے خطرناک چیز یہ تھی کہ جب انگوٹھی کو کاٹا جا رہا تھا تو آٹومیٹک ہتھیار لیے سینک ہمیں گھیر کر کھڑے ہوئے تھے.
بہت سے ایشیائی لوگوں کو اپنی دکانیں اور گھر ایسے ہی کھلے چھوڑ کر آنا پڑا تھا. انہیں اپنا گھر کا سامان بیچنے کی اجازت نہیں تھی.
کمپالا ایئرپورٹ تھا انٹیبے، کمپالا سے کچھ 20 میل دور ہے. اس راستے میں 5 روڈ بلاکس تھے آرمی کے، تو وہاں کچھ چیزیں لے لیتے ہیں اور وہ ریسیٹ بھی دیتے تھے. میرے پاس ریسیٹ ہے، اس میں لکھا ہے کہ 5 ویسٹ نکال لی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چوریاں کر لیتے تھے وہاں. کسی کو اپنے گھر، فرنیچر، گاڑی، دکان کا سامان سب ایسے ہی رکھنا تھا، کچھ بیچ نہیں سکتے تھے.
میں نے نرنجن دیسائی سے پوچھا کہ ایشیائی لوگوں دوارا چھوڑی گئی بے پناہ سمپتی کا آخر ہوا کیا.
گورنمنٹ نے قبضہ کر لیا، کسی آرمی والوں نے لے لیا، کسی منسٹر کے لیے. ایسے ہی کرپشن میں سب. عام آدمی تو کچھ ملا نہیں ہے، ان کو تو بیکاری ہو گئی، کیونکہ موسٹ پروڈکٹیو پارٹ آف دی اکانومی وہ دیش. یہ عجیب بات ہے، یہ جب مفت کی چیزیں ملتی تھی نا، یہ آرمی والے اس کو بولتے تھے بنگلہ دیش. بنگلہ دیش اسی ٹائم لبریٹ ہوا تھا، تو جو بھی ایشین کی پراپرٹی مفت میں ملی اس کا نام انہوں نے بنگلہ دیش رکھا تھا. سنائی پڑتا تھا ہم نے اتنا بنگلہ دیش کیا، ہم نے اتنا بنگلہ دیش کیا.
اس پوری گھٹنا سے دنیا میں ایدی امین کی چھوی ایک نیم سن کی شاسک کے روپ میں پھیل گئی. ان کی کرورتا کی اور کہانیاں بھی باہری دنیا کو پتا چلنے لگی. امین کے سمے میں سواستھ منتری رہے ہنری کیمبا نے ایک کتاب لکھی، اے اسٹیٹ آف بلڈ، دا انسائڈ اسٹوری آف ایدی امین، جس میں انہوں نے امین کی کرورتا کے ایسے قصے لکھے کہ پوری دنیا نے دانتوں تلے انگلی دبا لی۔
امین نے اپنے دشمنوں کو نہ صرف مارا بلکہ ان کے مرنے کے بعد ان کے شووں کے ساتھ بھی بربرتا پورن ویوہار کیا۔ یوگانڈا کے میڈیکل سمودائے کے بیچ یہ بات عام تھی کہ مردہ گھر میں رکھے بہت سے شووں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی اور ان کے گردے، لیور، ناک، ہونٹ اور گپتانگ غائب ملتے تھے۔ جون 1974 میں جب ودیش سیوا کے ایک ادھیکاری گاڈفری کیگالا کو گولی ماری گئی تو ان کی آنکھیں نکال لی گئیں اور ان کے شو کو کمپالا کے باہر جنگلوں میں پھینک دیا گیا۔
کیمبا نے یہ بھی لکھا کہ امین نے کئی بار ان کے اور دوسرے لوگوں کے سامنے شیخی بگھاری تھی کہ انہوں نے مانو کا گوشت کھایا ہے۔ ایک اور موقع پر انہوں نے ایک یوگانڈن ڈاکٹر کو بتایا تھا کہ مانو کا گوشت تیندوؤں کے گوشت سے ادھک نمکین ہوتا ہے۔ امین کے ایک پرانے نوکر موسز الوگا نے کینیا بھاگ آنے کے بعد ایک ایسی کہانی سنائی تھی جس پر آج کے یگ میں وشواس کرنا مشکل ہے۔ امین کے سمے میں یوگانڈا میں بھارت کے راجدوت رہے مدن جیت سنگھ اپنی کتاب کلچر آف دا سیپلکرے ایدی امینز مانسٹر ریجیم میں لکھتے ہیں۔
الوگا نے بتایا، امین کے پرانے گھر کمانڈ پوسٹ میں ایک کمرہ ہمیشہ بند رہتا تھا، صرف مجھے ہی اس کے اندر گھسنے کی اجازت تھی اور وہ بھی اسے صاف کرنے کے لیے۔ امین کی پانچویں بیوی سارا کیولابا کو اس کمرے کے بارے میں جاننے کی بہت اتسکتا تھی۔ انہوں نے مجھ سے اس کمرے کو کھولنے کے لیے کہا۔ میں تھوڑا جھجکا کیونکہ امین نے مجھے آدیش دیے تھے کہ اس کمرے میں کسی کو گھسنے نہیں دیا جائے، لیکن جب سارا نے بہت زور دیا اور مجھے کچھ پیسے بھی دیے تو میں نے اس کمرے کی چابی انہیں سونپ دی۔ کمرے کے اندر دو ریفریجریٹر رکھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے ایک ریفریجریٹر کو کھولا تو وہ چلا کر بے ہوش ہو گئیں۔ اس میں ان کے ایک پور پریمی جیز گٹا کا کٹا ہوا سر رکھا تھا۔
بہرحال ایشیائیوں کو باہر نکالے جانے کے بعد یوگانڈا کی پوری ارتھ ویوستھا تہس نہس ہو گئی۔ ضروری چیزوں کی بھیانک کمی ہو گئی، کئی ادیوگ بند ہو گئے۔ کمپالا کے کئی ریستوراں اپنے مینیو کارڈ کی اس طرح حفاظت کرنے لگے مانو وہ کوئی سونے کی چیز ہو۔ وجہ تھی کہ شہر کے پرنٹنگ ادیوگ پر ایشیائیوں کا ایک ادھیکار تھا۔
جب ایشین چلے گئے، ان امپلائمنٹ زیادہ ہو گئی، ڈسٹریبیوشن نیٹورک خراب ہو گئی۔ کوئی بار ہوٹل میں رہا تھا تو کچھ بار بریڈ نہیں ہے، کچھ بار بٹر نہیں ہے، کچھ یہ نہیں ہے۔ حالت کافی خراب ہو گئی تھی اور اکانومی جسٹ کراش۔
نکالے گئے قریب 60,000 ایشیائیوں میں سے ادھکتر کو برٹن نے شرن دی۔ ان لوگوں نے وہاں کڑی محنت کی اور بالکل زمین سے شروعات کرتے ہوئے برٹن کے ریٹیل ادیوگ کی پوری صورت بدل دی۔
سب سے زیادہ نمبر برٹن میں آئے کیونکہ وہ برٹش پاسپورٹ ہولڈرز تھے، آئی تھنک کچھ 23,000 اور سو آئے، اور ہمارے نیشنل تھے کچھ 11,000۔ وہ دوسرے کچھ آسٹریلیا گئے، کینیڈا گئے۔ کینیڈا سرکار نے بہت مدد کی تھی۔ کینیڈا سرکار نے آغا خان صاحب کی بات چیت کے بعد کینیڈا نے اسپیشل مشن بنایا وہاں کمپالا میں، اور انہوں نے کافی لوگ کو انٹرویو کیا اور جو ایلیجیبل تھے ان کو کینیڈا کا ویزا دے دیا، اور کینیڈا گورنمنٹ نے پیسج بھی فری دیا تھا ان کو۔ تو کافی لوگ کینیڈا بھی چلے گئے، کچھ پھر یورپ چلے گئے، کوئی نیوزی لینڈ گیا، کوئی آسٹریلیا گیا، کوئی برازیل گیا، مگر جو بھی چلے گئے انہوں نے کافی اچھا سیٹل کر دیا سب جگہ۔ آپ نے دیکھا برٹن میں تو انہوں نے ساری ریٹیل انڈسٹری چینج کر دی۔
اس تراسدی پر سب سے آشچرجنک رویہ تھا بھارت سرکار کا۔ انہوں نے اسے یوگانڈا کے آنترک معاملے کی طرح ٹریٹ کیا اور امین پرشاسن کے خلاف وشو جنمت بنانے کی کوئی بھی کوشش نہیں کی۔ نتیجہ یہ رہا کہ لمبے سمے تک پوروی افریقہ میں رہنے والا بھارتی سمودائے بھارت سے دور چلا گیا اور یہ سمجھتا رہا کہ ان کے مشکل سمے میں بھارت نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ ریحان فضل، بی بی سی، دلی۔
اور چلتے چلتے مکھیہ سماچار مانسی داش سے۔
بی بی سی سماچار۔
राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी NCR के मुद्दे पर राज्यसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये NRC की आखिरी लिस्ट नहीं है और सबको अपनी पहचान साबित करने का मौका मिलेगा। चीन के जिनान शहर में लाइव इंटरव्यू के दौरान एक चीनी कार्यकर्ता सेन वेंगवांग को माइक से हटने के लिए बाध्य किया गया है। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे देवाशीष कुमार। आपसे अगली मुलाकात नमस्कार भारत में होगी। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।